اگلی صورت واقعہ ہے. تین قسم کے گروہ ہیں انسانوں میں، کھڑے، چلنے والے اور دوڑنے والے. ففرو الی اللہ، ان تینوں سے ملاقات ہوگی. پوری صورت پڑھتے ہیں نا تو اینڈ پہ آپ کو ایک نتیجہ ملتا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو آپ کے لیے سمر کورس اناؤنس کیا گیا ہے، ہم اس صورت واقعہ کی بھی تفسیر کریں گے اللہ نے چاہا تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبا، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. کیسے ہو، سب کو تو وہ قیامت کا دھماکہ ختم کر دے گا. وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی. کبھی زلزلے کا کوئی منظر دیکھا تو سوچئے، بڑی بڑی عمارات زمین میں چلی جاتی ہیں، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پرہ گندا غبار بن کر رہ جائیں گے. اور جب زمین و آسمان پہ اتنا کچھ ہوگا تو انسان کا کیا حال ہوگا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا. اور آگے والے تو پھر آگے ہی والے ہیں. جو پیچھے بیٹھتا اس کی سوچ بھٹک جاتی ہے. آپ لوگ اس چیز کو فیل کرتے؟ اب سنیے ذرا آگے والوں کی خوبیاں. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور آگے والے تو پھر آگے ہی والے ہیں. سچ ہے نا، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں کم. اس پہ سوچئے، میں کن میں ہوں گی؟ میں ایک جہاز کی مثال سے سمجھا سکتی ہوں. جہاز میں ٹوٹل کتنی سیٹس ہوتی ہیں؟ عموماً 300 لگا لے جمبو ہے. اکانومی کلاس میں 280، اور فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس میں 20. وجہ، کم پیسے دے کر جانے والے زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ پیسوں والے کم. جنت کے 100 درجے ہیں، 100 فلور ہیں جنت کے. فلور سے مراد یہ نہیں ہے کہ 1, 2, 3 اپارٹمنٹ رینک، 1 سٹار، 2 سٹار. دنیا میں سب سے اونچا ہوٹل کس سٹار کا ہوگا؟ 12. 5 تو بنا ہوا، 12 بھی ہے. جانا ہے تو میں دے دوں آپ کو پتا. یہاں 12 پہ رک جاتے ہیں، وہاں 100 سٹار ہوگا. جنت کے یہ مختلف درجے لوگوں کو ان کے عملوں پہ ملیں گے. ففروا الی اللہ پہ عمل کرنے والے مقربین ہوں گے، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والے. اور جو بےچارے میڈیوکر بیچ میں رہنے والے، کچھ کر لو کچھ نہیں، اچھا برا، وہ انشاءاللہ پھر بھی اصحاب الیمین تو بنیں گے. یہ دعا کرے اللہ ہمیں اصحاب الشمال میں نہ شامل کرے، جو باہر رہ گئے، جن کی جنت مس ہو گئی. مقربین کا انجام، بہت زیادہ ہوں گے پہلوں میں اور کم ہوں گے پچھلوں میں. وجہ کیا کہ پہلے دور میں لوگ زیادہ نیکیاں کر گئے، اللہ ہمیں اس دور میں سے بھی اگلوں میں کر دے. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساگر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کر لیں. کبھی کھائیں دنیا میں پرندوں کا گوشت؟ چڑیا کھاتے ہیں لوگ، چڑے کے چڑیاں. آپ دیکھیے، سب سے سافٹ میٹ، ایزی ڈائجسٹ، اور اتنا سا ہوتا ہے، بوٹی تو ہوتی نہیں اس کے اوپر، چھوٹی سی مرغی کہہ لیں جس پہ بوٹی نہ ہو، پر سافٹ اور ہضم ہونے والا گوشت جنت میں دیں گے. اور سب سے مہنگا گوشت ہے، کبوتر بھی کھاتے ہیں لوگ. اللہ کہتے ہیں ہم وہاں اتنا لذیذ گوشت ان کو دیں گے، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. تو عورت کو اپنے حسن کو چھپا کر رکھنا ہے. کیوں؟ وجہ جواب دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. تو کیا کریں پھر؟ ففروا الی اللہ، بھاگیں اللہ کی طرف. وہاں کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. آج دنیا میں آپ خود نہیں بھی سننا چاہتے نا، تو آپ کو کہیں نہ کہیں سننی پڑتی ہے، راست چلتے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ. وہاں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، کوئی گالم گلوچ نہیں ہوگی، کوئی شور و غل نہیں ہوگا. تو یہ تو تھے فرسٹ کلاس والوں کا پروٹوکول. अब मीडियम क्लास बीच वाले और दाएं बाजू वाले, दाएं बाजू वालों की खुशनसीबी का क्या कहना, वो बेखार बेरियों और तह बतह चढ़े हुए केलों और दूर तक फैली हुई छाँव और हर दम रवा पानी और कभी खत्म न होने वाले और बेरोक टोक मिलने वाले बकसरत फलों और ऊंची नशिस्गाहों में होंगे। इनकी बीवियों को हम खास तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे और इन्हें बाकिरा बना देंगे। मुकर्रबीन के लिए क्या थी हूरें और आम जन्नतियों के लिए क्या अपनी ही बीवियां, आप बात करें। और हूरों के जिक्र पे मूछों को ताव वो देते हैं जो शायद नमाज भी नहीं पढ़ते, ये लिख ले मर्दों को सुना दें। हूरें जो मिलनी है वो मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह को मिलनी है। उलमा कहते हैं कुरान में जहां हूरों का जिक्र है वो अल्लाह के रास्ते में भाग दौड़ करने वालों को मिलनी है। अल्लाह ताला जानता है अपने कामों को। अच्छा, अच्छी बीवी की पहचान क्या है? अपने शौहरों की आशिक और उम्र में हमसिन। ये सब कुछ दाएं बाजू वालों के लिए है, वह अगलों में से भी बहुत होंगे और पिछलों में से भी बहुत। ओपन चॉइस है, दरमियाना टिकट सभी खरीद लेते हैं, दरमियानी कीमत की चीज सभी ले लेते हैं, महंगी चीज थोड़े लोग लेते हैं इल्ला माशाल्लाह। फरमाए इस जन्नत में ज्यादा लोग जाएंगे। और औरत की खूबी अपने शौहर से प्यार करना, नहीं है प्यार दिल में मांगिए, और इतने साल साथ रहकर तो हो ही जाता है। कोई बुरी आदत है उसको चेंज करवा लें। और बाएं बाजू वाले, बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना, वो लू की लपट और खौलते हुए पानी और काले धुएं के साए में होंगे, जो ना ठंडा होगा ना आराम दे। ये वो लोग होंगे जो इस इंजाम को पहुंचने से पहले खुशहाल थे और गुनाहे अजीम यानी शिर्क पर इसरार करते थे, कहते थे क्या जब हम मरकर खाक हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर रह जाएंगे तो फिर उठा खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके हैं। ऐ नबी, इन लोगों से कहो यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर जमा किए जाने वाले हैं जिसका वक्त मुकर्रर किया जा चुका है। फिर ऐ गुमराहो और चुटलाने वालों, तुम जक्कूम के दरख्त की गजा खाने वाले हो, इसी से तुम पेट भरोगे। और जक्कूम बदबूदार खाना, जख्मों की धोवन, कड़वा खाना। थोर का दरख्त कभी आपने देखा हो, बचपन में कभी पढ़ा देखा होगा, हाथ लग जाए तो हाथ कड़वे हो जाते थे, दूध सा नहीं निकलता। कैक्टस, इंग्लिश में कैक्टस कहते हैं इसको। जक्कूम, अस्तगफिरुल्लाह, इसी से तुम पेट भरोगे और ऊपर से खौलता हुआ पानी तौनस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। आपको तो कि जहन्नम के अजाबों में एक बड़ा अजाब भूख और प्यास का अजाब होगा। ये है इन बाएं बाजू वालों की जियाफत का सामान रोजे जजा में। आप देखिए कि दुनिया में इंसान क्या क्या चाहता था, वहां क्या मिला। तो जो दुनिया अल्लाह की नाराजगी के साथ मिले उसको नहीं लेना। अल्लाह ताला कुछ सवाल करते हैं, आप फिर दोबारा यही बात आगे आ जाएगी, लेकिन बीच में कुछ सोल सर्चिंग क्वेश्चन। हमने तुम्हें पैदा किया, फिर क्यों तस्दीक नहीं करते किसकी? ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी तुमने गौर किया, जो नुतफा तुम डालते हो इससे बच्चा तुम बनाते हो या इसके बनाने वाले हम हैं? सारी दुनिया के शौहर बीवी ख्वाहिश रखते रहे ना, बच्चा नहीं पैदा हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। हमारी एक बहुत प्यारी साथी है, पुरानी स्टूडेंट, ओल्ड सीनियर्स में, कल उनका मैसेज सुना, कहने लगी मेरे बेटे और बहू के घर बेटी पैदा हुई है शादी के 22 साल बाद, 22 years। अब इस आयत को पढ़िए, तुम पैदा करते हो बच्चे या हम पैदा करते हैं? अल्लाह पैदा करता है, किसी के इख्तियार में नहीं है। इसी तरह नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौत, हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम कर दिया। जवानी में ले जाते बच्चे को, बुढ़ापे में अभी छोड़ा हुआ है, सिसक रहे मौत ही नहीं आ रही। तो ना जीना अपनी मर्जी से ना जाना अपनी मर्जी से, तो यही कुछ 15 20 25 साल की मस्ती है ना, इसको खत्म कर दे इंसान तो इंशाल्लाह हमेशा का अच्छा अंजाम। और हम इससे आजिज नहीं कि तुम्हारी शक्लें बदल दें। इंसान को अपनी शक्ल का बड़ा मान होता है, संवारता सजाता है, कोई बुरी बात नहीं है अगर हदों में रहकर करे, और अगर इसको इधर उधर कर दे और अल्लाह की नाराजगी और अच्छी शक्ल को फिर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो अल्लाह कहते हम तुम्हारी शक्लें बदल सकते हैं। आज दुनिया में भी लोग फीचर्स बदलवा लेते हैं, कितने उसके बाद में साइड इफेक्ट्स। फरमाया और किसी ऐसी शक्ल में तुम्हें पैदा कर दें जिसको तुम नहीं जानते। अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते ही हो, फिर क्यों सबक नहीं लेते? कुछ और सवाल जवाब? आप सब इसके जवाब खुद को भी दें और लिखें अपने पास। कभी तुमने सोचा ये बीज जो तुम बोते हो इनसे खेतियां तुम उगाते हो या इनके उगाने वाले हम हैं? बताइए। अल्लाह सुभान तआला, हम चाहें तो इन खेतियों को भूस बना कर रख दें और तुम तरह तरह की बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो उल्टी चट्टी पड़ गई बल्कि हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। एक और चीज, और इस पे गौर होता है जब आप जहाज में ऊपर उड़ रहे होते हैं। अभी आपका जहाज टेक ऑफ कर रहा है और थोड़ी देर में आप बादलों के गोलों में से गुजरते हैं। सोचिएगा उस मंजर को सामने रखते हुए। कभी तुमने आंखें खोल कर देखा, ये पानी जो तुम पीते हो इसे तुमने बादल से बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इसे सख्त खारी बनाकर रख दें, फिर क्यों तुम शुक्रगुजार नहीं होते? आपको पता है कि आसमानों में पानी के समंदर हैं जी। ये दुनिया में जितनी पानी के जखीरे हैं ये आसमानों से आते हैं। किसी ने चंद दिन पहले एक पिक्चर भेजी, बिल्कुल देखने में मुझे ऐसे लगा कि समंदर है, ऐसे जैसे वो लहरें और मौजें। थोड़ा सा गौर किया जो नीचे भी लिखा हुआ था कि आसमान पे बादल इस शेप में था कि समंदर की मौजें लग रही थी। आप थोड़ा सा पानी यहां से जरा उधर लेकर जाइए, गाड़ियां लेके जाती है ना इधर से उधर, इतना मनोटनो पानी इधर से उधर और वो फ्री ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सब कौन करता है? एक और चीज, कभी तुमने ख्याल किया ये आग जो तुम सुलगाते हो इसका दरख्त तुमने पैदा किया या इसके पैदा करने वाले हम हैं? हमने इसको याद दहानी का जरिया और हाजतमंदों के लिए सामान जीस्त बना दिया, फिर करो क्या? फसब बिस्मि रब्बिक अलअजीम, बस से नबी अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करो। करेंगे आप? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाह हमें तस्बीह करने वाला बना दे। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ तारों के गिरने की जगह की, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। क्या कसम का जवाब सुन लीजिए, इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये एक बुलंद पाया कुरान है। सूरह रहमान में क्या था? अर रहमान अल्लमल कुरान। सूरत वाकया में क्या आया? और आपको तो पंच सूरे की याद सूरते हैं जो अक्सर लोग पंच सूरे में पढ़ते हैं। इंशाल्लाह इसी का कुछ हिस्सा आपको कराने का इरादा है अगर अल्लाह ने आपके नसीब में किया तो। कभी लोग इस कुरान का हक अदा करने का सोचें भी तो नहीं कर सकते जिसका जिक्र अल्लाह ताला इधर फरमाते हैं। एक महफूज किताब में सब्त जिसे मुतहरीन के सिवा कोई नहीं छू सकता, तंजीलों में रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का नाजिल करता है। चलें सब सवाल खत्म, आखिरी सवाल और उसके बाद जवाब। अफ बिहाजल हदीस अंतुम मुदहिनून, बिल्कुल अपने आप को फोकस करें, इन लफ्जों में डूबिए। फिर क्या इस कलाम के साथ तुम बेएतनाई बरतते हो? बेएतनाई क्या होती है? इग्नोरेंस, को वैल्यू ही नहीं देते। हाँ कुरान इट्स ओके नो प्रॉब्लम, हल्का समझते हो इसकी तालीम को, इतना हल्का समझते हो दुनिया की तालीम को क्या समझते हो और दीन की तालीम को तुम ये समझते हो, और इस नेमत में अपना हिस्सा तुमने ये रखा कि इसे झुठलाते हो। याद रखिए एक इंसान की अल्लाह की निगाहों में वैल्यू और मुकाम वही होगा जो उसने अपनी जिंदगी में इस कुरान को वैल्यू और मुकाम दिया। 3 सेकंड सोचिए, मैं इस कुरान की तालीम को क्या समझती हूं? ये कुरान मेरे और मेरे बच्चों के लिए क्या चीज है? क्या मैं इसकी कीमत दे सकती हूं? क्या मैं इसका हक अदा कर सकती हूं? क्या मैं इस किताब को अल्लाह की रहमत के बगैर ले सकती हूं? इसके लिए तो इंसान अपने आप को बेच कर ना और दुनिया के सारे कामों से खुद को फारिग करके अल्लाह के आगे हाथ जोड़ देना कि अल्लाह मुझे इस कलाम से बेरग़बत ना करना, बेइत्नाई ना करना, तो ये फायदे का सौदा है। सारी दुनिया की नेमतें एक पलड़े में डालिए और एक में इस कुरान को डालिए। इसीलिए अल्लाह करे तुम मेरे इस कलाम को क्या समझते हो? सच बताएं आज हमारे मुआशरे में मौलवी साहब और पहले तो मास्टर साहब लोग कहते थे, अब तो कुछ और ही कहते हैं, कोच, ट्यूटर, ट्रेनर, और बड़े प्यारे प्यारे नाम है। क्या एक ही मुकाम है दोनों का? सच बताइए। मौलवी साहब वो साइकिल पे पाँव मारते हुए आते हैं और बाहर से कह दिया जाता है, जाएं जी आज नहीं बच्चे ने पढ़ना, नानी के घर गए, छुट्टी करें, दे देंगे हम आपको वो 20-25 रुपए जो देते हैं आपको हफ्ते के। और मास्टर साहब आए हो जान पे बनी होती, चलो पढ़ो। पता क्या है, मास्टर साहब को 5 दिन 10,000 रुपये ट्यूशन देनी है। मैं इस साल पाकिस्तान गई, मैं हैरान हो गई, घर के बच्चों को देखा ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, क्यों? कहते स्कूलों में कोई नहीं पढ़ाई होती मास्टरों से, और वही मास्टर्स हैं जो सुबह में स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस में, उनके पास एक सब्जेक्ट का रेट 10,000 से लेके 25,000 रुपये पे चल रहा है। एक बहुत करीबी दोस्त है तो उन्होंने बताया उनका ट्यूशन सेंटर, कहती लाखों की इनकम है सिर्फ ट्यूशन सेंटर खोल ले कोई तरह के, और लोग आंखें बंद करके भेजते हैं। तो दीन पे अल्लाह की पनाह, इतनी बातें मनवाते हैं हम दीन वालों से गोया कि उनके सर पे एहसान करना है। तो याद रखिए अल्लाह का ये कलाम, अफ अभी हाजल हदीस अंतु मदहिनोन, क्या तुम इस कलाम के बारे में सुस्ती करते हो, बेतनाई करते हो, इसका हक नहीं देते, और इस नेमत में अपना हिस्सा ये रखा है कि इसको झुटलाओ। ये आयत बंदे को हिला देती है, तुम्हारे नसीब में ये है कि तुम इसको झुटलाते रहो। खुद से कहें कि नहीं अल्लाह, मैं इसको नहीं झुटलाने वाली। अब अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो और अपने इस ख्याल में सच्चे हो, तो जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है, अब ये डेथ बेड सीन है, कोई एड़ियां रगड़ता हुआ दुनिया से जा रहा है। फलौला इज़ा बलगतिल खुल्कुम वअन्तुम हीना इज़िन तंज़ुरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है और तुम आंखों देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, उस वक्त उसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते? उस वक्त तुम्हारी बनिस्बत हम उसके ज्यादा करीब होते हैं मगर तुमको नजर नहीं आते। कभी देखा किसी अपने प्यारे को मरता? किसने नहीं देखा होगा। तरले कर लें, मिन्नतें कर लें, आगे हम सूरत कयामत में पढ़ेंगे कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला तो ले आ उसको, हमारे हाथों से लोग निकल जाते हैं। जरूरत है इस बात की, जितनी बेबसी के साथ जान देते हैं ना अल्लाह को, उतनी बेबसी से ये जिंदगी भी दे दे, लगा दे अपने आप को अल्लाह के रस्तों में। कहला वैसे भी तो तूने मेरी जान लेनी है, और जिस्म जाके लोगों ने मिट्टी में डाल देना है, कुछ दिन में गल सड़ जाना है, ये पकड़ मेरी जान और रूह और मुझे खपा दे अपने रस्तों में। फिर वो मरने वाला अगर मुकर्रबीन में हो, सूरत के शुरू में तीन गिरोहों से इंट्रोडक्शन हुआ था, अब उनका अंजाम है। पहली बेस्ट सूरत, अगर मरने वाला मुकर्रबीन यानी क्लोज सर्कट लोगों में अल्लाह का बहुत प्यारा हो, तो इसके लिए राहत और उम्दा रिस्क और नेमत भरी जन्नत है। और अगर वो साबे यमीन में से हो, तो इसका इस्तकबाल यूं होता है कि सलाम है तुझ पे, बस ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं है। पहले को फूलों के गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं, फरोहम व रैहान, खुशबुएं, फूल, लेकिन दूसरे को बस जस्ट वार्म वेलकम, आ जाओ, गुड, शुक्र है बच तो गए कि तू असहाबे यमीन में से है, सलाम है तुझे, तू असहाबे यमीन में से है। और अगर वो झुटलाने वाले गुमराह लोगों में से हो, अल्लाह में से किसी को ना करे, तो इसकी तवाज़ो के लिए खौलता हुआ पानी है और जहन्नुम में झोंका जाना है। ये सब कुछ कतई हक है, करो क्या? फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अजीम, पस से नबी अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करो, सुभान रब्बी अल अजीम। आप देखिए ये तीन इंजाम पढ़े, मैं सूरत वाकया जब भी पढ़ू मेरा दिल करता है मैं पूरी पढ़ के फिर इस पे गौर करूं। अपना दौर जो नेकी का था अल्लाह के नबी का, उसके दौरे अव्वल के साबिकून अल अव्वलून कौन थे? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा। वो अपने हिस्से का काम कर गए, फफिरु इलल्ला किया, नेकियों में पहुंच गए। बाद में जो सहाबा आगे बढ़े अस्हाबुल यमीन, पर मैं जिसने ईमान के साथ नबी सल्लम को देख लिया वो जन्नत में जाएगा। आज के दौर में भी अल्लाह ताला आपको मुझे ये दोनों मौके देता है, साबिकून अल अव्वलून कौन होंगे? जो फफिरु इलल्ला, जो भागने वाले, और साबुल जमीन कौन होंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, फराइज की हद पे बैठे, घर बैठ के फर्ज नमाज रोजा हज बच्चे शौहर जिम्मेदारियां कपड़े धोने, इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी। याद रखिए जन्नत मुश्किल नहीं है, असल मसला साबुल जमीन से उभर कर अपग्रेड करा के मुकर्रबूद में आना है। हमारा चूंकि अक्सर ही ट्रेवलिंग का मौका रहता है, इतना बिग डिफरेंस होता है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में, और कभी नहीं फर्स्ट क्लास पे सफर किया। जाना सबने एक जगह, पहुंचना सबने एक जगह, खाना दे देंगे ना, अच्छा तो साथ ले जाओ, कुर्सी जितनी को चौड़ी है, अगर लेटना होता तो पीछे ही खाली होती, हमें तो तीन मिल जाती है, हम इकट्ठे थोड़े खाली हैं, जाके तीन पे सो जाते हैं। अब फर्स्ट क्लास वाले तो नहीं जाके चौड़े होके लेट सकते, सबका एक ही वक्त है, ड्यूरेशन एक है। मैं अक्सर कहती हूँ कि हाँ 8 घंटे की फ्लाइट अगर अगलों की 4 में पूरी होती हो तो मैं उसमें भी चली जाऊंगी। क्यों? क्यों जल्दी पहुंचना है। तो याद रखिए अल्लाह ताला मुझे आपको ले जाए। अबू जर गरीब सहाबी थे, कहा अल्लाह के नबी माल दौलत वाले तो सवाब कमा गए, मेरे पास तो माल नहीं है। यानी अब जिसके पास माल ही नहीं है वो क्या करे? कहा कोई बात नहीं, तुम हर नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ तस्बीहात बताई, फरमाया तुम भी उनके दर्जों को पहुंच जाओगे। तो साबिकून कौन है? जो सिर्फ फर्ज नहीं सुन्नत और नवाफिल का भी इहतमाम करते हैं। जल्दी किस बात की है कि भाग के वो थोड़ी सी सीटें मार लूं? दुनिया में तो लिमिटेड सीट्स होती हैं ना, आखिरत में लिमिटेड नहीं होगी। आपके मेरे पास हमेशा मौका रहेगा कि हम साबिकून में जाएं। दुआ करें अपने लिए कि अल्लाह मुझे साबिकून अलवलून में ले जाए। तिलावत सुना दें आखिरी आयत की।
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
سبحان ربي العظيم، كتنا بيار الله كلام.